पद्मनाभ प्रभु।
ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान श्री नरसिंह देव से कि ये असुर जो हिरण्यकशिपु है ये मेरे ही वरदान से इतना शक्तिशाली हो गया था कि इसको इस संसार का कोई जीव मार नहीं सक रहा था, और उसने तपोबल से इतना शक्ति प्राप्त किया कि प्रकृति के नियमों को बदल कर हम सबको परेशान करने लगा। गलती मेरी थी इसमें, फिर हम ही सब परेशान थे, और आप ही हमारी सबकी रक्षा करते हैं, इसलिए आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सौभाग्य से हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद मृत्यु से बचा लिया गया है, और यद्यपि वह अभी बालक है किंतु हे महाभागवत, किंतु है महाभागवत, अब वह पूर्णतया आपके चरण कमलों की शरण में है। उसका पिता हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र प्रहलाद जो महान भक्त है उसको मारने के लिए नाना चेष्टा करता है, और हम लोग बचा नहीं पा रहे थे। ब्रह्मा जी ये कहना चाह रहे हैं हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे, हम लोग केवल देख रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे, इतना शक्तिशाली था वो। और दुखी दुख में भी थे और प्रार्थना करते थे कि भगवान कुछ कीजिए, तो आप अवतरित हुए, कृपा किया, इसकी रक्षा की, अब हमें इसकी कोई चिंता नहीं है क्योंकि इसने आपके चरण कमलों को ग्रहण कर लिया है, तो हमें इसकी अभी कोई चिंता नहीं है, ये आपके चरण कमलों की शरण में है। ये दो प्रार्थनाएं थी जिसका अनुवाद देखा, और आज का श्लोक जो है एतत् वपुस्ते, आपका ये दिव्य शरीर जो है उसका जो भगवान जायतो परमात्मा ना, हे भगवान आपका ये दिव्य शरीर का जो ध्यान करता है, आप परमात्मा स्वरूप है, आपका जो ध्यान करता है सर्वतो गोत्र, ऐसा व्यक्ति सर्वत यानी सभी जगह से रक्षित रहता है। गोत्र का अर्थ होता है रक्षित रहता है, क्योंकि आप उसकी रक्षा करते हैं। किसकी रक्षा करते हैं? जो सदैव अपना ध्यान भगवान के दिव्य वपु का चिंतन कराने में लगते हैं, उसका ध्यान धरते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि संत्रास सभी प्रकार के भय से आप मुक्त कर देते हैं, यहां तक कि मृत्यु का भय से भी वो निर्भय हो जाता है। और फिर महत्व का बात बताया, जिगाम सतह, जिगाम सतह का अर्थ होता है जो व्यक्ति अपने शत्रुओं से हमेशा पीड़ित है। हर जीव कोई ना कोई देखना उसका शत्रु रहता ही है, चाहे आप कहीं भी जाओ, अमेरिका, रशिया, जापान, लंदन, भारत में आश्रमों में रहो, बाहर हो, कुछ भी, एक व्यक्ति तो ऐसा रहेगा ही जो उस समय के लिए हमें परेशान कर रहा है। यह हम सब लोगों का अनुभव रहेगा, शायद ही ऐसा कोई दिन रहेगा जिस समय हमको ऐसा कोई नहीं है जीवन में जो हमको परेशान नहीं कर रहा है, चाहे कभी कोई भक्त हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माता हो, चाहे पुत्र हो, पति हो, प्रेसिडेंट हो, या भारत का प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति तो रहता है जो सदैव परेशान करता है। और जीव जीते हुए भी एक्चुअली उस चिंताओं की वजह से मरा हुआ है, मृत्यु का भय तो है ही उसको अंतिम, लेकिन उसका अनुभूति रोजीते समय में हर क्षण में नहीं होता है, लेकिन हर क्षण में एक पीड़ा तो लगी रहती है कि ये मेरा शत्रु है, मुझे परेशान कर रहा है, ये मेरे को बहुत ये किया है, वो किया है, इसका जो चिंता है ना उसमें वो जीते हुए भी मरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान यहाँ पे ब्रह्मा जी ने ये शब्द इस्तेमाल किया है, जिगाम सतह, मीन्स ऐसा व्यक्ति भी अगर भगवान के बपू पे यानी के दिव्य शरीर का ध्यान धरता है तो वो ऐसे भय से भयभीत नहीं रहेगा, उसको कोई भय नहीं रहेगा, उसके शत्रु शायद हो सकते हैं, वो शत्रु नहीं मानेगा, लेकिन लोग उसे शत्रु मानकर उसका बहुत बुरा करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ता, उसको कोई भय नहीं लगता है, और जीवन तो ऐसा निर्भय जीता है, और जब मृत्यु का समय आता है तब भी वो बिना किसी भय मृत्यु को स्वीकार करता है, हालांकि उसके लिए मृत्यु ही नहीं रहता है, बाह्य दृष्टि से मृत्यु है, लेकिन वो भगवत धाम जाता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं सत्य घटना अर्जुन के जीवन से। कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ पूरा, और फिर जब वो पांडवों के जो पांच बालकों की हत्या करके ये जो अश्वत्थामा भागा था द्रोणाचार्य का पुत्र, उसके बाद जब अर्जुन उसको मारने के लिए भाग रहे थे, कृष्ण स्वयं उसके साथ थे, रथ चला के लेके जा रहे थे उसको, उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था अर्जुन पे उसको खत्म करने के लिए। अर्जुन ने देखा कि ब्रह्मास्त्र मुझे मारने के लिए आ रहा है, मृत्यु भय तो हर जीव को रहता है, ब्रह्मास्त्र मुझे मारने के लिए आ रहा है, अर्जुन के पास इतनी शक्ति थी वो अगर चाहे तो ब्रह्मास्त्र को परास्त कर सकता था, रोक सकता था, उसको काट सकता था, और उसे यह भी ज्ञात था कि वो सामने वाले व्यक्ति के पास अभी ये शक्ति या समझ नहीं कि इस ब्रह्मास्त्र को वापस कैसे ले ले, यानी ये जो छूटा है वो डेफिनेटली मुझे मारने के लिए ही आया है। तो दो रास्ते थे उसके पास, काट डालो। दूसरा रास्ता था एक भक्त जो स्वीकार करता है भगवान की शरण में जाओ, उनका चिंतन करो, मृत्यु के भय से दूर हो जाओ। वो भक्त होने की वजह से, हालांकि उसकी अपनी शक्ति थी, लेकिन अपनी शक्ति से ज्यादा भरोसा उसने भगवान पे किया। और उसने वो काटने का नहीं सोचा, लेकिन क्या सोचा उसने, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर त्वम एक दैय माना नाम अपवर्गो सी संश्रुते। वो तुरंत कहता है कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर, मृत्यु के भय से भक्तों को केवल आप ही बचा सकते हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर त्वम एक दैय माना नाम, केवल आप ही अकेले भक्त की मृत्यु से रक्षा कर सकते हैं और कोई भी सक्षम नहीं है। मैं कौन सा ऐसा तीर चला लूं जो ब्रह्मास्त्र को काटेगा उसका गारंटी रहेगा। हालांकि उसमें शक्ति थी, लेकिन वो सोचता है उसका क्या गारंटी, हो सकता है वो भी विफल हो जाए, अंतिम क्षण में मुझे याद ना आए वो श्लोक, हाँ कैसे उसको काटना है वगैरह। तो भक्ता नाम अभ्यंकर आप ही केवल दे सकते हैं, तो हम एक आप ही केवल है जो मुझे निर्भय कर सकते हैं। अपवर्गोसी संश्रुते, और इस मृत्यु से जो आ रहा है मेरी और इससे बचाकर अपवर्ग वैकुंठ गमन आप ही मुझे केवल करवा सकते हैं, इसीलिए हे कृष्ण मैं आपकी शरण लेता हूं। और फिर उत्तरा का भी हम उदाहरण देखते हैं। चलो अर्जुन तो शक्तिशाली था, उसके हाथ में हथियार थे, उसके पास विद्या थी। उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित एक छोटा सा बालक था, उसके पास ना माता के पास कोई शक्ति थी और ना पालक के पास कोई शक्ति का सवाल था। उस समय में दोनों ऐसी लाचार स्थिति में थे। जब अश्वत्थामा ने वापस एक अस्त्र छोड़ा कि इस लास्ट पुत्र जो उत्तरा के गर्भ में परीक्षित है इसको मार देना है, तो उत्तरा क्या करती है, यही श्लोक पे आधारित अर्जुन ने जैसे किया सीधे कृष्ण के पास ही दौड़ती है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वत् अभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा कहती है हे कृष्ण पाहि पाहि रक्षा करो, पाहि पाहि महायोगी, आप तो महायोगी है। उस समय उसका नाम कृष्ण उसमें इस्तेमाल नहीं किया, महायोगी क्यों कहा, क्योंकि पुत्र सामने हाजिर नहीं है, गर्भ में बैठा है। आप महायोगी हैं, मेरे हृदय से आप गर्भ में प्रवेश कर सकेंगे, इसीलिए महायोगी शब्द का इस्तेमाल करती है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, आप जगतपति है, आप देवाधिदेव है, आप ही केवल रक्षा कर सकते हैं। और यत्र मृत्यु परस्परम, मृत्यु तो सब जगह है और वो मृत्यु अब मेरे पुत्र के बहुत ही करीब आ रहा है, जो सब जगह है जो मृत्यु, जैसे एक बार राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि मृत्यु यहाँ पे बैठा रहता है दोनों भवों के बीच में, वो इंतजार कर रहा है कि इसका कब समय है, इसको कब मार दे। तो वो उत्तरा भी वही करती है, भगवान की शरण में आती है और हम जानते हैं कि फिर उसकी रक्षा हुई, कोई मृत्यु भय नहीं। उस श्री श्री राधा गिरिधारी जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री प्रभुपाद की। तो उस लाचार अवस्था में भी भक्त ने भगवान की शरण ली और शक्ति के साथ संपन्न अर्जुन ने भी भगवान की ही शरण ली। और यह श्लोक यही कह रहा है। श्री प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य में लिखा है, ईश्वर मृत्यु भय से भी अपने भक्त की रक्षा कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में कहा हर एक की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि कोई भी मृत्यु के हाथों से बच नहीं सकता। हर जीव जो यहाँ पे आया है उसका मृत्यु निश्चित है। कितने साल जिएगा, मान लो एक उदाहरण लेते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ कितने साल आप जिएंगे पता नहीं, मुझे और आपको पता नहीं है, लेकिन आपके जन्म के समय निश्चित हो चुका। कितने साल जिएंगे कोई कह सकता है, ऐसा कुछ निश्चित हुआ कि 50 साल जिएंगे या 60 साल जिएंगे, ब्रह्मा ने लिखा कुछ नहीं। एक्चुअली किसी के लिए भी साल नहीं लिखा गया है, किसी भी जीव के लिए, हाँ लिखा गया है ब्रह्मा के द्वारा, लेकिन ब्रह्मा ने जो लिखा है वो साल नहीं है कि 50 साल जिएगा, ब्रह्मा ने जो लिखा है वो श्वास लिखा है कि इस व्यक्ति को उसके पूर्व कर्म फल के अनुसार इस शरीर में, इस जन्म में इसको 50,000 करोड़ श्वास मिलेगा। श्वास का मतलब होता है एक श्वास लेना और एक बाहर निकालना, उसको एक गिनो। ऐसे मान लो 50,000 करोड़ इनके बारे में ब्रह्मा ने लिख दिया, यानी इस शरीर में इनको 50,000 करोड़ श्वास चलेंगे तब तक ये इस शरीर में रहेंगे। जिस समय 50,000 करोड़ श्वास का अंतिम सांस खत्म हुआ, गया काम से, इतने साल लगेंगे उसको। मान लो इनको 50,000 करोड़ दिया है, मुझे भी 50,000 करोड़ दिया है, फिर भी जरूरी नहीं है कि ये 60 साल जिएंगे, मैं 70 साल जिएगा, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि उसका जो ड्यूरेशन रहता है, गैप जो रहता है, एक श्वास और उच्छ्वास का, हर एक जीव का अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि हर एक जीव का इस शरीर में उसका कर्म अलग अलग होता है, उसके कर्मों पर आधारित है। वापस इतना कॉम्प्लिकेटेड साइंस है, इसको समझना पड़ता है। ऐसा नहीं कि इसका 50,000 करोड़ है, मेरा भी 50, तो ये भी 50 साल जिएगा, मैं भी 50 साल जिएगा, ये बराबर 50 एज में मरेगा, 50 में मैं भी मरूंगा, नहीं जरूरी है, मैं 30 में मर सकता हूँ, 100 में मरेंगे, हो सकता है ऐसा। क्यों? क्योंकि मान लो मुझे सिगरेट पीने की आदत है, मैंने आदत प्राप्त कर ली कहीं से, तो सिगरेट पीते पीते मेरे श्वास जो है उसका जो रेट है वो बढ़ जाएगा। मैं 5 सेकंड में अगर 10 श्वास ले रहा हूं तो वो 5 सेकंड में 5 श्वास लेंगे, क्योंकि उसको बुरी आदत नहीं है, तो मेरा 5 सेकंड उसके लिए 2.5 सेकंड हो गया, तो मेरा आयु 100 साल, 50 साल का, तो उसका 100 साल का हो गया। ये इसके पीछे का कैलकुलेशन है। तो निश्चित क्या है? श्वास, आयु में कितना आयु जिएंगे आपकी आदतों पे आधारित है। देखिए भगवान की व्यवस्था, अगर आप गलत कार्य इस शरीर में करेंगे तो अपने आप ही आपको सजा मिलेगी, किसी को आकर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दारू पी रहे हैं, आप कुछ धूम्रपान कर रहे हैं, आप कुछ तंबाकू सेवन कर रहे हैं, आपके श्वास अपने आप बढ़ेंगे। आप दौड़धाम का काम कर रहे हो, स्पोर्ट्समैन जो अपना जीवन पसार करता है ना 500 किलोमीटर दौड़ने में, 1000 किलोमीटर दौड़ने में, उसका श्वास इतना फटाफट फटाफट खत्म हो रहा है, उसका आयु आधा पार ऐसा कम होते जाता है दिन प्रतिदिन। अब कोई योगी जैसा व्यक्ति है जिसको कोई चिंता नहीं है, कुछ लेना देना नहीं, आराम से जगह पे बैठा है, चिंतन कर रहा है परमात्मा का, भगवान का, उसका श्वास बहुत कम चलेगा। कभी कभार तो योगी इतने सक्षम हो जाते हैं कि अपने एक ही श्वास को बहुत लंबे समय के लिए रोक देते हैं, तो फिर देखा जाता है कि 100 साल जीने वाले आजकल के लोग योगी हिमालय पे 5,000 साल से जी रहे हैं। कैसे? उसका भी तो उतना ही कुछ रहेगा ना 100 साल के आसपास, लेकिन उसने अपने श्वास को कंट्रोल करके उसको 5,000 साल का बना दिया। मान लो इनके पास 5 लाख है, मेरे पास भी 5 लाख रुपया है, कितने समय में मैं इस्तेमाल करूंगा ये मेरे हाथ में। मैं एक दिन में खर्चा करता हूँ, ये 1 महीना 10 महीना शायद पूरा जीवन भी बिताए, तो इसीलिए ये श्वास का, लेकिन मृत्यु निश्चित है जिस दिन आपका वो लास्ट सेकंड आया, खत्म। इस संबंध में एक कथा है। एक्चुअली एक बार एक राजा था, बहुत शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली था वैष्णव राजा था वो। उसका एक मंत्री था, वो भी काफी शक्तिशाली था, दोनों की मित्रता थी। राजा मंत्री के बिना रह नहीं पाता है, मंत्री राजा के बिना रह नहीं पाता है। राजा को ये डर तो था कि ये मंत्री कभी अगर मर गया तो मैं अकेला ठीक से राज नहीं चला पाऊंगा, तो उसकी इच्छा रहती थी कि इसके पहले मैं मरूं, ये कभी ना मरे, ये बाद में मरे मेरे पास। लेकिन उसको तो वैष्णव था, फिलोसॉफी पता थी कि मृत्यु जिस दिन आएगा उसको जाना पड़ेगा। लेकिन फिर उसने सोचा मैं अपने तपोबल से यमदूत को भी रोकूंगा, इसको नहीं मरने दूंगा पहले। तो उसका मंत्री एक दिन बाजार में घूमने गया था, कुछ ले रहा था, वो भी अच्छा वैष्णव था, तो उसने यमदूत को देखा आते हुए अपनी ओर, तो इतना डर गया वो, इतना डर गया कि भागा 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 राजा के पास और कहता है कि यमदूत ने मेरे को देखा और मुझे लेने के लिए आ रहा है, और अभी आप मेरी रक्षा करो। तो राजा कहते हैं मैं तेरी अभी की भी रक्षा करता हूं। उसके पास तपस्वी ट्रेन था, उसने बोला इसमें बैठो, यहां से 1000 किलोमीटर दूर तुमको मैं भेज देता हूं, और यहां से 1000 किलोमीटर दूर 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 कोई देश में, अमेरिका जैसे कोई देश के एकदम रण प्रदेश में भेज दिया कि तुम उधर रहो, मैं इस यमराज के यमदूत के साथ डील करता हूं और फिर बाद में बुला देता हूं। तो ये चला गया, इसको भेज दिया। अब तपस्वी ट्रेन था, बहुत जल्दी पहुंच भी गया उधर, एक ही दिन में वो पहुंच गया। आज की बात है, कल तक वो 1000 किलोमीटर दूर उधर जाके बैठा था। और यहाँ पे राजा ने यमदूत को पकड़ा, बोले तुम क्यों आए हो इधर मेरे इस व्यक्ति को पकड़ने के लिए आज? बोले मैं आज तुम्हारे मिनिस्टर को पकड़ने नहीं आया, मैं तो दूसरे को पकड़ नहीं पाया, उसका मृत्यु का दिन है। तो बोले तो उसकी ओर क्यों घूर के देख रहा था? तो कहता है कि मैं ये सोच रहा था कि इसका मृत्यु का डेट तो कल का है, और इसका अपॉइंटमेंट मेरा कल का वो हजारों किलोमीटर दूर सूडान के कुछ रण प्रदेश में है, तो ये आज इधर कैसे है, इधर से उधर तक कैसे पहुंच जाएगा ये एक ही दिन में? मैं ये सोच के उसके और देख रहा था, और मैं आज उसको और कुछ नहीं देखा है, कल तो मुझे उसको उठाने का, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर से तो मैं सोच रहा था इधर कैसे है। तो वो पहुंच चुका था उधर धर्म के नियमों के अनुसार। तो ये घटना ऐसी होती रहती है, आदमी का जिसका मृत्यु लिखा रहता है। हमारे संबंधी अभी एक मृत्यु पाए द्वारका में, उसकी इच्छा थी कि द्वारका धाम में मरिए, महिमुन जाएंगे, ये वो हमें सब इच्छा, इसलिए वो तो जन्म से द्वारकावासी द्वारका में रहते हैं। तो अचानक रात को 2 बजे, शक्तिशाली, कोई तबियत का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो निरोगी एकदम शरीर है, अचानक रात को 2 बजे उसको इच्छा आ गई कि चलो वीरपुर दर्शन करने को जाएंगे जलाराम के मंदिर में। अभी 2 बजे इच्छा हुई, बोलो क्या क्या इच्छा है, कब कब होती है जीव को पता नहीं। तो रात को उठाया, बोला कि चलो टैक्सी लेके जाएंगे, उसका खुद का कार है, तो बोले कार लेके जाएंगे दर्शन करके कल वापस आ जाएंगे। तो निकल गए घर वाले 2:30 बजे और द्वारका से बाहर चले गए, और राजकोट के पहले जहाँ वीरपुर से थोड़ा नजीक था उधर रात को कुछ 5:30 बजे एक बड़ा अकस्मात हुआ उस रात का, और वहां कुछ मृत्यु हो गई। अब ये घटना से मैं सोच रहा था कि देखो उसका अगर इच्छा नहीं होती और इधर मृत्यु होती द्वारका में, तो वही कौन जाती थी, चाहे कुछ भजन किया है कि नहीं किया है, कुछ लेना देना नहीं। लेकिन ये नहीं हुआ, रात को 2:30 बजे मृत्यु उसको बुलाया कि उधर आज इधर लिखा है, इधर नहीं मरने दूंगा, उधर 4:30-5 बजे उसको बुलाया, पूरा प्लान भी फ्लॉप गया, सब कुछ हो गया, हमारे हाथ में नहीं है, कृष्ण के हाथ में, कृष्ण जो चाहेंगे वो होगा, एक ही है। यहाँ पे जो श्लोक में बताया जा रहा है, अगर हम कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, स्थान काल का आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा मृत्यु, पहली बात तो हमको डर भी नहीं है, और हम निश्चित ही वैकुंठ जाएंगे, ये पक्का है। लेकिन कृष्ण का सदैव चिंतन करने के लिए कुछ शर्तें होनी चाहिए हमारे जैसे बद्धात्माओं के लिए। एक तो उसको किसी भी व्यक्ति का पीड़ा नहीं होना चाहिए, अगर उसको किसी व्यक्ति से, किसी जीव से पीड़ा हो रही है, तो उसका चिंतन उस पीड़ा में पूरा चला जाता है, उसकी वजह से वो जप कीर्तन में मन नहीं लगा सकता है। तो फिर प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि ऐसी पीड़ाओं से भी दूर हो सकता है अगर व्यक्ति कीर्तन भजन में अपना मन लगाने का प्रयत्न करता है, तो उसको वो चिंता भी नहीं रहेगी। अरे देखा गया है, जिसको भी अगर जीवन में ऐसी चिंता होती है ना, अकेले अकेले जप करने का ट्राई करो या कीर्तन करने का ट्राई करो, नहीं होगा। अगर मंदिर में आ गए, भक्तों के बीच में बैठ जाओ, थोड़ी देर में देखना 10-15-25 मिनट के बाद आपका कीर्तन भजन मन शुरू कर देता है, वो चिंता कम होती जाती है, क्योंकि हमारा मन जो है कृष्ण में जैसे लगने लगता है, वो भय चला जाता है, वो भय का कोई आधार नहीं रहता है, भय का आधार केवल मन, मनोगथान बोलते हैं इसको, मन है, जो मन को हम कृष्ण के चरण कमलों में अगर सदैव लगा दे तो कोई इसका डर नहीं है। लेकिन एक शब्द और बताते हैं इस संबंध में आचार्य, कि जीव को किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए अपनी शक्ति पे, तो ही वो कर सकेगा। ये दूसरे है कि पीड़ा तो रहने दो, अगर जैसे ही भगवान में मन लगेगा निर्भय हो जाएगा, लेकिन जीव को अपनी शक्ति का, अपने एहसास का, अपनेपन का कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। ये शर्त है, ये थोड़ी कठिन शर्त है, ये भी जा सकता है अगर हम चिंतन करते भगवान का, लेकिन थोड़ा कठिन होता है। अहंकार रहेगा ना तो आप कीर्तन में इधर मंदिर में आके अंदर भी बैठेंगे ना सबके बीच में, वो अहंकार आपको भगवान में मन नहीं लगाने देगा, वो अहंकार आपको ये कहते कहलाने रहेगा, मन से कहेगा उससे अच्छा तो मैं कीर्तन करता हूँ, इसको क्यों दिया है कीर्तन करने के लिए, इससे अच्छा तो मेरा प्रवचन है, मेरे को क्यों नहीं बिठाया है, इसका सेवा का ये क्या है। वो जो अहंकार है ना मेरी अपनी शक्ति का, उस अहंकार का त्याग करना पड़ता है, जो अर्जुन ने किया। अर्जुन ने ये नहीं सोचा कि इस ब्रह्मास्त्र को क्या, ये छोटा मोटा अश्वत्थामा, मैं इतने हजारों को काट के मार के आया हूं, इसका ब्रह्मास्त्र अभी काट देता हूं, इसमें मुझे कृष्ण को पूछने की कोई जरूरत नहीं है, इसका चिंतन करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं सोचा। तुरंत ही बिना कोई अहंकार, बिना कोई अपनी शक्ति का गर्व, कृष्ण कृष्ण महाबाहु आप बताइए। अहंकार भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं होता है, यहां तक कि उनके वैकुंठ के वासी शुद्ध भक्त जो उनकी नित्य सेवा में है, नित्य भक्त की बात कर रहा हूं, नित्य जो निवासी है, उन लोगों के मन में भी अहंकार आया तो कृष्ण को मंजूर नहीं है, उसको भी भगवान के कुछ ना कुछ लेसन सिखाते हैं, पाठ सिखाते हैं, ताकि उसका अहंकार उधर ही खत्म हो जाए। एक बार की घटना है, सुदर्शन को अहंकार आ गया था, जगन्नाथपुरी की बात है, एक दो कथा है, एक पद्म पुराण की कथा है, वो द्वारका की है, सुदर्शन को अहंकार हुआ था, एक पद्म पुराण की कथा, जगन्नाथ शास्त्र जो जगन्नाथपुरी है उसकी भी कथा है उस संबंध में। सुदर्शन को एक बार अहंकार आ गया जगन्नाथपुरी में कि जगन्नाथ जी का नित्य सेवक और नित्य अस्त्र, सबसे बड़ा जो अस्त्र है वो मैं हूं। जगन्नाथ को भी अगर कोई उनके ऊपर आक्रमण करते हैं तो वो अपनी रक्षा के लिए मेरा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मैं रहता हूं तो वो जीतते हैं, मेरा इस्तेमाल होता है, मैं उनके शत्रु को काटता हूं और ये निश्चिंत हो जाते हैं। तो मेरा बहुत महत्व है एक्चुअली। जगन्नाथ जी जो सिंहासन पे बाहर बैठे थे, तभी अंदर मंदिर में नहीं थे, मालूम है ना, साल में एक बार स्नान के समय स्नान वेदी पे उनको बाहर लेके आते, मंडप के अंदर तीन वेदी है वहां बिठाते, वहां बैठे थे जगन्नाथ। और सुदर्शन वहां बाहर चक्कर मार के अपना सेवा जो है मंदिर का रक्षा करना प्रोटेक्ट करना वगैरह कर रहा था। तो उसके मन में ये भाव आया तो जगन्नाथ जी समझ गए कि इसको अहंकार हुआ है। अभी मेरा ये तो नित्य भक्त है, जो हमारे जैसे कनिष्ठ रहते हैं अहंकार आता है तो भगवान क्या करते हैं पता है, किसी भक्त के द्वारा संदेश देते हैं कि अहंकार मत करो। तो हम नहीं सुने, अगर सुन लिया तो अच्छा है, नहीं सुना तो दूसरे वरिष्ठ भक्त से कहलाएंगे, नहीं सुने तीसरे से कहलाएंगे। जब तीन चार भक्तों से कहला दिया नहीं सुधरे, माया को फोन कर देते हैं मोबाइल पे कि इसको संभाल दो। अब फिर माया ऐसी झापट मारती है हमारे जीवन में, इतना परेशानी लेके रखती है कि फिर हमको वो अहंकार छोड़ने की तैयारी आ जाती है। तो वो भगवान के स्टेप्स है हम लोगों के लिए, यहाँ के लिए, लेकिन वैकुंठ वासियों के लिए भगवान डायरेक्ट खुद ही डील कर देते हैं। कभी कभी वो नित्य भक्त को रोक लेते हैं, तो इस समय इन्होंने नित्य भक्त को रोका। उन्होंने बताया सुदर्शन को कि अभी इन पुरुष विस्तार में हनुमान जी मेरे भक्त बैठे हैं, उनको जाके बोलो कि मैंने यहाँ पे जगन्नाथपुरी में उनको बुलाया है। तो सुदर्शन गया सीधा इन पुरुष में, हनुमान जी को बोला आपको जगन्नाथ जी बुला रहे आ जाओ। तो हनुमान जी ने बोला ठीक है। और सुदर्शन फट करके जगन्नाथपुरी पहुंच गया और मंदिर की रक्षा करने के लिए जोर जोर से चक्कर ऐसा लगाना शुरू कर दिया स्पीड में मंदिर का। हनुमान जी आए लेकिन देखा कि ये सुदर्शन जो इतना स्पीड में जा रहा है वो रास्ता उनका रोक रहा था, और सुदर्शन जान पूछ के रास्ता रोक रहा था। बोले देखता हूँ ये बंदर कैसे अंदर जा रहा है, बंदर को क्या भगवान से मिला, भगवान ने क्या इसको बुलाया है, मेरे जैसे सेवक पड़े हैं। तो वो जान पूछ के अहंकार के बस होकर कि इतना स्पीड में घूमने लगा कि हनुमान जी जा नहीं पा रहे थे एक्चुअली। हनुमान जी ने सोचा कि एक रास्ता है मैं इसकी शक्ति को काट के निकल जाऊं, लेकिन ये सही नहीं रहेगा क्योंकि तो भगवान का भक्त है, भगवान के भक्त को काट कर जाने की इच्छा नहीं होती। रावण खड़ा होता तो निकल जाते थे काट के लेकिन ये तो भगवान का भक्त है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं। तो अभी दूसरा रास्ता है, मैं भगवान का चिंतन करता हूं कि भगवान आप ही रास्ता बताइए कि मैं क्या करूं इस परिस्थिति में, आप बुला रहे हैं मैं जा नहीं पा रहा हूं, आपका भक्त बीच में और कोई होता तो मैं देता था झापट, लेकिन इसको क्या करूं मैं। तो चिंतन किया, इमीडिएटली भगवान ने उसको आठ हाथ दे दिया हनुमान जी को, दो तो थे छह और दे दिए एक्स्ट्रा, अष्टभुजा हनुमान हो गए। और उनके चार हाथ में उन्होंने चक्र दे दिया हनुमान जी को, और दो हाथ में करतार दे दिया। तो दो हाथ से करतार से हनुमान जी कीर्तन करने लगे, दो हाथ से प्रणाम किए जगन्नाथ जी को, और चार हाथ में जो चक्र दिया उसको हनुमान जी इतना तेज घुमाया कि उस चक्र को काट के वो निकल चुके, पार कर दिया। तपस्वी हनुमान कहते हैं, अगर आप जगन्नाथपुरी मंदिर गए हैं तो उनका जो सिंह गेट है, सिंह द्वार, उसके राइट हैंड साइड पे जो दूसरा गेट लगता है वहां पे एंट्रेंस में ऊपर चढ़ेंगे तो एक अष्टभुजा हनुमान का विग्रह का दर्शन है, हाँ, जिसको तपस्वी हनुमान भी कहते हैं। वो उस समय से उधर ही है हनुमान जी, अभी भी उधर विराजमान है। तो उन दिनों में जब आए तो जगन्नाथ जी के पास आके हाथ जोड़ के बोले कि ऐसा ऐसा हुआ, देखो मुझे आपका ध्यान लेके सुदर्शन का मार काट के आना पड़ा। बोले कोई नहीं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। और उसी समय सुदर्शन आ गया, अरे ये कैसे अंदर घुस गया करके ऐसे दौड़ते हुए। तो फिर जगन्नाथ ने कहा कि तुम्हें अहंकार है कि तुम्हारी शक्ति को कोई काट नहीं सकता है, ये गलत है। और वो दिखाने के लिए मैंने हनुमान जी को बुलाया और अष्ट उसको भुजा दिया और मैंने चक्र दिया, तुम्हारी शक्ति को देखो वो कैसे काट के अंदर आ गया, इसलिए गर्व मत करो। लेकिन तुमने ये जो भक्त को रोकने का प्रयत्न किया ना मुझसे मिलने के लिए, ये बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, और उस अपराध के लिए मैं तुम्हें एक सजा देना चाहता हूं। अभी क्या करेगा, हाथ जोड़ के चक्र खड़ा है, बोले ठीक है आप जो सजा दीजिए मैं स्वीकार करता हूं। बोले कलयुग में तुम चक्र रूप में नहीं रहोगे, कलयुग में तुम एक लकड़ी के रूप में रहोगे, चक्र रूप तुम्हारा खत्म हाथ से, लकड़ी के रूप में रहोगे कलयुग में। तो फिर वो बेचारा रोया, माफी मांगा भगवान से, कहता है लकड़ी के रूप में मत रखो, और रखना है तो आपके करीबी रखना, आपके पास रखना, मुझे दूर मत कहीं फेंक देना। तो बहुत जब गिड़गिड़ाया तो भगवान बोले ठीक है मेरे बाजू में ही सदैव रखूंगा। तो जगन्नाथ के बाजू में देखो लकड़ी के रूप में चक्र खड़ा है, उस दिन से लेकर अभी तक ये चक्र उधर ही खड़ा है। उसके बाद भी बहुत रोया, रोकर कहने लगा कि नहीं नहीं इतना ही पर्याप्त नहीं है, मेरा ओरिजिनल जो चक्र का रूप है मुझे बहुत प्रिय, मुझे दे दो करके। बोले ठीक है दूंगा, लेकिन मेरे पास नहीं रखूंगा, ये अपराध पूरा करने के लिए तुमको पूरा कलयुग बिताना पड़ेगा, इसके लिए मेरे मंदिर के टॉप पे तुमको रखूंगा, बाजू में नहीं रखूंगा, हाथ में धारण नहीं करूंगा। तो उस दिनों से चक्र हमेशा मंदिर के टॉप पे रहता है। फिर उसको आशीर्वाद भी दिया, बोले कि मंदिर के टॉप पे जो चक्र है अगर वो कोई भी जीव दूर से आपका वहां दर्शन करेगा तो उसका दर्शन का फल उतना ही रहेगा जितना मंदिर में अंदर आके मेरा वो दर्शन करेगा। तो ये भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि अगर हम दूर से भी कहीं अगर किसी कृष्ण मंदिर के ऊपर के चक्र का दर्शन करके उसको प्रणाम करते हैं तो वो मंदिर में विग्रह के दर्शन करने का, प्रणाम करने का फल ही हमें प्राप्त होता है। और इसी बात और इसी सिद्धांत के चलते हुए चैतन्य महाप्रभु जब अठार नाला पहुंचे पहली बार जगन्नाथपुरी की यात्रा में, तो अठार नाला पे से जब भागे और देखा दूर से चक्र जगन्नाथ मंदिर के ऊपर का, तुरंत ही वो दंडवत प्रणाम किया और बेहोश हो गए थे, क्योंकि वो साक्षात जगन्नाथ का फल मिला था दर्शन करने का, वो चक्र को इतना फिर भगवान ने आशीर्वाद वगैरह दिया। तो कहने का बात यह है कि भगवान भक्त के अहंकार को स्वीकार नहीं करते, जीव का मृत्यु निश्चित है, जीव की शक्ति सीमित है, जी को जो थोड़ा समय इस शरीर में रहने के लिए मिला है, जो थोड़ी कुछ शक्ति है, कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि आई एम द एबिलिटी इन द मैन, जीव की शक्ति एक्चुअली मैन यानी भगवान ने दिया, उनका अंश है, चाहे थोड़ा सा अंश हो चाहे ज्यादा हो, भले वो कोई अमेरिका का ओबामा प्रेसिडेंट बन जाए बहुत शक्तिशाली, वो भी कृष्ण का है। और एक लाचार कोई इधर का मेयर का गरीब व्यक्ति रहेगा, उसका जो भी माइनर छोटा सा शक्ति रहेगा तो वो भी कृष्ण के दिए उसके कर्म के फल अनुसार। लेकिन ये तो सत्य है कि हर एक जीव का शक्ति उसका खुद का है, उस शक्ति का इस्तेमाल वो कैसे करेगा उसके ऊपर से उसका आगे का जीवन, उसका शरीर, उसका सब कर्म फल तैयार होते रहता है। अगर कृष्ण ने मुझे शक्ति दी तो मुझे इस शक्ति का इस्तेमाल कृष्ण प्रचार में करना चाहिए, कृष्ण भक्तों को सहायता देने में करनी चाहिए, अन्य जीवों को भक्ति में लगा के वो कैसे आगे बढ़े इसके लिए पूर्ण दया भाव के साथ निर्अहंकार होकर जितना हो सके का शक्ति सामर्थ्य इस्तेमाल करना चाहिए। और बिल्कुल ये भाव नहीं होना चाहिए मैं करता हूं और मेरी शक्ति से ये चल रहा है हो रहा है, मैं अनेक भक्तों को करता हूं, अगर ये भाव आ जाता है तो वहां पे एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। आपका कार्य तो शायद चलते दिख रहा है लेकिन होता क्या है मालूम है, आपके इस अहंकार से आप मदद करने जाते हैं, सर्विस करने जाते हैं, लेकिन अहंकार की आदतों की वजह से उन भक्तों को, कई भक्तों को हम लोग दुखी भी कर देते हैं अपने व्यवहार से। तो जो भक्त उस समय दुखी होता है ना, उस वो दुखी क्यों हुआ, क्योंकि उसका कुछ पूर्व का कर्म फल है उसकी वजह से वो दुखी हुआ, लेकिन उसका निमित्त आप खुद अपनी इच्छा से बने, भगवान ने आपको नहीं बनाया, भगवान ने आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया, आप अपनी गर्व की वजह से बने। तो होता क्या है, उसका जो पाप उधर खत्म हुआ, जो उसने दुख सहन किया उसका जो पाप खत्म हुआ, उतना पाप जो है वो आपके अकाउंट में आ जाता है, और उसका फल क्या रहेगा, आपको उस स्थिति को आज इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उस स्थिति को प्राप्त करना है। और वैसा ही व्यवहार आपके साथ कोई भक्त या कोई व्यक्ति करेगा और उस समय आपको वही वेदना का अनुभव करना। जैसा मान लो मैं हरे कृष्ण भक्त को अभी परेशान कर रहा हूँ मेरी शक्ति की वजह से, उनको उनको बहुत दुख हो रहा है, मुझे आनंद आ रहा है, मुझे एक एक मन के स्तर पे एक आनंद मिल रहा है कि मैं शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, मैं इसका कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन ये लाचारी की वजह से बहुत कड़प है, दुखी है अंदर से, उनका हृदय एकदम विचलित है, लेकिन लाचार है कुछ कर नहीं पा रहे और मैं आनंद ले रहा हूँ। तो उनका जो समझो कि 1000 यूनिट पाप उधर खत्म हुआ, उसका भुगत हो लेकिन वो हजार यूनिट पाप मेरे अकाउंट में आ गए, लेकिन इस समय मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पूर्व कर्म की वजह से मेरे पास अभी शक्ति है, तो मैं उस शक्तियों का, उस ऐश्वर्य का अंत में हूँ मन के सर पे, इसलिए मुझे वो अनुभव नहीं होगा। लेकिन ये हजार यूनिट खत्म नहीं हुआ, ये हजार यूनिट भुगतने के लिए या तो इसी जन्म में व्यवस्था होगी, जब मैं एक दिन लाचार हो जाऊंगा, जब मैं दुर्बल हो जाऊंगा, तब कोई शक्तिशाली व्यक्ति मुझे परेशान करेगा, और ये जन्म में नहीं हुआ तो और भी बड़ा खतरा। क्या खतरा? दूसरा जन्म लेना ही पड़ेगा उसका अनुभव करने के लिए। उस दूसरे जन्म में नहीं हुआ तो क्या होगा? तीसरा जन्म लेना ही पड़ेगा। तब तक चलते रहेगा जब तक मैंने उस पीड़ा का अनुभव नहीं किया है जो पीड़ा मैंने इनको एक साथ दी है। कितना खतरनाक है ये साइकिल, सोचो कर्म का। इसलिए किसी को भी दुखी करने के लिए, परेशान करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल जब हम करते हैं ना, तब इसका चिंतन करना चाहिए एक्चुअली में कि मेरा क्या होगा बाद में। आज तो चलो 5-10 साल के लिए मैं बच जाऊंगा शक्ति की वजह से, लेकिन बाद में क्या होगा। कभी कभार तो कोई व्यक्ति क्या कर देता है मालूम है, अपना एक कार्य से 60-70-80 हजार लोगों का नुकसान कर देता है या उसको दुखी कर देता है। कोई एक ऐसा बड़ा गलत उसका निर्णय हो जाता है, और वो निर्णय वो इतना ठोस हिटलर की तरह पूरा कम्युनिटी पे डाल देता है। मान लो ओबामा प्रेसिडेंट ने ऐसा ठोस निर्णय लिया, पूरे अमेरिकन पे डाल दिया, और हजारों अमेरिकन उस निर्णय की वजह से दुखी हो गए, हजारों लोग पीड़ित हो गए, तो उन हजारों का कर्म उसके ऊपर जो आया, तो उसको एक ही जन्म में तो वो हजारों का कर्म भुगत नहीं सकेगा, इसलिए उसको वो हजारों जन्म लेना पड़ेगा, और हर जन्म में एक एक की पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। यानी लीडर बनना और भी कठिन है। हाँ, लीडर बन के कोई निर्णय लेके ठोस मारना ना किसी के ऊपर, हिटलर मेंटालिटी वाले जो लोग रहते हैं ना, उसके लिए तो और भी खतरनाक है। एक जीवन का 2-4 महीनों का आनंद, लेकिन सजा का प्रमाण देखो हजारों करोड़ सब। हरे कृष्ण भक्त हो सकता है कि पूर्व जन्म में कुछ ऐसा किया रहेगा जिसकी वजह से उनको ये फल मिला, लेकिन इसका निमित्त मुझे नहीं बनना चाहिए, मेरे शक्ति का इस्तेमाल करके उसका निर्णय कृष्ण अपनी रीत से करेंगे। किसी को निमित्त बनाए चाहे, या कोई रोग के रूप में उसको बीमारी दे दे, या कुछ और भी इलाज कर सकते हैं, भगवान को जो करना करेंगे। मुझे अपने शक्ति का इस्तेमाल करके निमित्त बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिद्धांत को इस श्लोक से समझना चाहिए। जन्म मृत्यु का चक्कर इस तरह से हम लोग खतरनाक कर देते हैं। कई बार हमारे संस्था में भी होता है, कोई लीडर एक ऐसा निर्णय लेता है जिससे 60-70-80 लोगों को इतना परेशानी हो जाता है, और वो लोग बेचारे तड़पते हैं, वो चिंतित रहते हैं, उनका कितना जीवन शायद 1-2 महीना, तो उसको ये नहीं मालूम है लीडर को उस समय कि इस निर्णय की वजह से उसको थोड़ा जो आनंद मिला रहेगा शायद, लेकिन 70 रिजर्वेशन कर लिया उसने अपने जन्म का, 70 रिजर्वेशन। हरे कृष्ण भक्त दुखी हुए उसका अनुभव करने के लिए आना, मान लो पद्मनाभ दास दुखी हुआ उसका अनुभव करने के लिए और एक जन्म आना, मान लो मधुसूदन प्रभु दुखी उसका जन्म के लिए और एक बार आना। तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर लोगों का तो इनफिनिट रिजर्वेशन होगा, वो हजारों जन्म लेने आते हैं, हजारों देशवासियों उनकी वजह से दुखी होलसेल में होते रहते हैं। इट्स वेरी डेंजरस, इतना इतना खतरनाक है ये कर्म के लिए। तो इस लोक में ब्रह्मा जी अच्छा सा इलाज दे रहे हैं, उन्हें खत्म करो जन्म मृत्यु का चक्कर। कैसे खत्म करो? हरि चिंतन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने पद का, अपने ऐश्वर्य का, अपनी शक्ति का अहंकार को गुरु परंपरा के चरणों में अर्पित करके भगवान का चिंतन का पूरा प्रयत्न करें, बस इतना काफी हो जाएगा। बाकी जितनी सेवा सक्षम है उतना करिए, नहीं हो पाया तो क्षमा मांगिए और आगे चलते रहिए। अगर ऐसा कर सकेंगे एक थोड़ा सा 20-25-30 साल का जीवन निकल है, कोई भगवान ये नहीं बोला 10,000 करोड़ साल करोगे तो ही मैं तुमको वापस होना, नहीं बोला। एक इस शरीर में जितना समय बचा उतना कर लो तो बात ही खत्म हो गई। नए शरीर में आओगे तो फिर एक्सपेक्ट करूंगा कि वो पूरा समय करो, है ना। मान लो अभी मेरा 10 साल ही बचा है, अगर मैं ये 10 साल ठीक से कर लूं तो मेरा वैकुंठ गमन। अब मान लो मैंने नहीं किया, अगर नया जन्म लिया उस जन्म में मुझे 100 साल बिताना है तो 100 साल अपेक्षा की जाएगी मुझसे। कोई अहंकार मत करो, कभी किसी को दुखी मत रखो, अच्छा सा चिंतन करो। अभी 100 साल में कभी ना कभी तो ऐसी घटना घटित हो ही जाएगी जहां मैं अहंकार के वश, तमोगुण के वश किसी ने किसी को परेशान कर दिया, और जैसा ही परेशान किया रिजर्वेशन एक हो गया जन्म का, डेंजरस है ना। तो उससे अच्छा है बात तो सफेद हो चुके हैं, शरीर को जर्जरित होने को आया है, मरने का टाइम तो निश्चित ही आ गया है 10-15-25 साल, तो बचा हुआ समय का इस्तेमाल कर लेना चाहिए इन श्लोकों पे आधारित जीवन बिताने का। अब बाकी सारे भोग ऐश्वर्य को 20-25 साल के लिए छोड़ देंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा कठिन है, कुछ कठिन है एक्चुअली, जन्म जन्म की आदत है, लेकिन हिम्मत करके भक्तों का आशीर्वाद से प्रयत्न करना चाहिए। 20-25 साल अगर हम अपने ऐश्वर्य का भोग नहीं करेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम वैकुंठ में जाएंगे। अब प्रभुपाद जी ने इन्हीं इसी अध्याय के पूर्व श्लोकों का तात्पर्य लिखा है, वैकुंठ में कृष्ण का दास के पास भी कृष्ण जितना ही ऐश्वर्य है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, लाचारी का कोई अनुभव ही नहीं है वहां पे, कृष्ण के दास के पास भी कृष्ण जितना ही ऐश्वर्य है, कोई चिंता करने की। इसका मतलब ये नहीं कि हम उधर फिर भोग शुरू कर देंगे, उधर वो भोग करना ही नहीं चाहता है, वो ऐश्वर्य को कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करना चाहता है। अब वो वहां करेगा उसका गारंटी चाहिए उनको, वो गारंटी उनको कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा, यहाँ तुम करो 20-25 साल तो गारंटी उनको मिल जाता है, यहाँ तुम वहां भी वैसे ही करोगे। जब विकट परिस्थिति में कर रहे हो तो सही परिस्थिति में तो करोगे, है ना, यहाँ विकट परिस्थिति है, यहाँ सब परेशान कर रहे हैं, देह मिला है, माया है, भोग की करोड़ों जन्मों की आदत है, ऐश्वर्य है, अहंकार है, ऐसी विकट परिस्थिति में अगर हम कृष्ण का सेवा अपने सारे ऐश्वर्यों के साथ कर दें तो ऑब्वियसली वहां तो करोगे, क्योंकि वहां तो सब अनुकूल परिस्थिति है। तो ये टेस्ट है, ये एग्जाम है, एग्जाम पास कर लो तो गमन हमारा अनुकूल परिस्थिति में सेवा का पास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की कोई प्रश्न कोई टीका कृपा भगवान ने क्या किया, भगवान ने ऐसा किया उसका उस ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए बताया कि इस तरह से उसको काटते हो, फिर मैं वो अश्वत्थामा को पनिशमेंट के लिए बोला, फिर भी अश्वत्थामा सुधरा नहीं, इसलिए थोड़े समय के बाद ऊपर से पूछ रहा। अश्वत्थामा अभी भी जीवित है, हिमालय के जंगल में नहीं गए, भगवान क्योंकि ब्राह्मण का पुत्र था इसलिए अर्जुन को बोला इसको मारो मत, क्योंकि ब्राह्मण का पुत्र है। द्रौपदी ने भी प्रार्थना किया अर्जुन को, बोला कि इसको मारो मत, ये ब्राह्मण का पुत्र है, जिस तरह मेरे पुत्र के वियोग में मैं तड़प रही हूँ इस तरह इसकी माँ न तड़पे, इसलिए इसको मत मारो, उन्होंने माफ कर दिया, वैष्णव का दर्शन था। क्योंकि वह द्रौपदी सोच रही थी वो सही किया, कोई माता उसका पुत्र कितना भी नालायक रहेगा उसके दुख को माता कभी नहीं सहन कर सकती, असंभव है, कितनी भी निम्न कक्षा की जगत की स्त्री रहेगी ना, क्योंकि जब वो माता के रूप में ना तब उसके पुत्र का दुख वो सहन नहीं कर सकती, वो हो सकता है कि पूरे संसार को नष्ट करने जितना उसका कॉन्शियसनेस चेतना हो सके, लेकिन बेटे के लिए नहीं हो सकता, इसलिए द्रौपदी का वो कृपा था जो हो सकता, तो अर्जुन को मारने के लिए बताया, लेकिन फिर बोला ब्राह्मण पुत्र छोड़ो, फिर द्रौपदी ने बोला हाँ ये सत्य बात है, कन्वर्सेशन में लीला में इसका वर्णन है। शिला प्रभुपाद 1965-1977 12 साल में 14 साल 14 बार विश्व का भ्रमण करके 108 मंदिर का निर्माण किया, तो उनको ये जलदुता में तो जो हार्ट अटैक आया वो तो छोड़ दो, लेकिन 66 और 76 यानी ये 10 साल में दो बार मृत्यु आ चुकी थी उनको लेने के लिए, लेकिन प्रभुपाद जी ने मना कर दिया कि मैं अभी नहीं आता, मेरा कार्य बाकी है, दो बार प्रभुपाद जी ने मना किया, एक्चुअली वो जाना भी चाहते थे, लेकिन जब भक्तों ने प्रार्थना किया प्रभुपाद जी आप मत जाइए, क्योंकि आप जाएंगे तो श्रीमद् भागवतम ट्रांसलेशन पूरा हुआ नहीं है, हम लोग ठीक से मैनेजमेंट जानते नहीं है मंदिर कैसे चलाना, और हम लोग का इतना क्षमता नहीं है कि इस विश्वव्यापी आंदोलन को आगे बढ़ाए, इसलिए आप रुकिए भाषांतर कीजिए हमको मार्गदर्शन दीजिए और हम इस विश्वव्यापी आंदोलन को आगे बढ़ाए, जब ऐसा लगेगा तब हम देखेंगे, इसलिए अभी कृपा करके रुक जाएंगे। तो भक्तों का सच्चा प्रार्थना था उन दिनों में, सब फॉरेनर विदेशी भक्तों का सच्चा ऐसे बोलते हैं हेल्पलेस थे वो लोग, लाचार थे और प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने बोल दिया कृष्ण को मैं अभी नहीं आऊंगा बाद में आऊंगा, कृष्ण ने बोला ठीक है बाद में आना, लेकिन जब अंतिम 1977 14 नवंबर आया ना तभी भी प्रभुपाद जी को चॉइस मिला था, वो भी वर्णन है सत्सर्वमानंद ने किया है, तभी भी चॉइस मिला था जाना है कि नहीं जाना है, तभी भी कृष्ण ने पूछा अभी आना है कि नहीं आना है। अतः प्रभुपाद जी ने शिष्य को बताया कि बार बार मैं कृष्ण का बात भी टालना नहीं चाहता हूँ, तुम नहीं आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, अब मैं जाता हूँ। अभी तब तक 10th कैंटो तक भाषांतर हो चुका था और 10वां स्थान कृष्ण के रूप में भी आ चुका था, 11वां 12वां बाकी था और बड़ा आंदोलन हो चुका था और विशेष करके भारत से कई लोग जुड़ चुके थे। पहले क्या स्थिति थी कि विदेशी लोग थे, भारत के लोग नहीं थे, लेकिन 77 में क्या हुआ, भारतीय अनेक जुड़ चुके थे, जैसे गोपाल कृष्ण महाराज है, भक्तिचार महाराज है, लोकनाथ महाराज है, तो भवगोविंद महाराज थे। तो प्रभुपाद जी को विश्वास था कि ये भारतीय जन्मों जन्म के साधु है जो अभी जुड़े हुए हैं मेरे साथ और ये लोग के संग में रह के ये लोग पूरा संघ चलाएंगे और परंपरा का आशीर्वाद तो है ही करके प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि आप, मैं कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहता, मैं जाऊंगा। खुला बताया महाराज ने, खुला भी बताया श्री प्रभुपाद की जय।